श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से हम पढ़ रहे हैं। कल से हम इस शास्त्र ग्रंथ का पहला अध्याय से पाठ शुरू किया था। पहला अध्याय में किसका वर्णन हुआ था? पहला अध्याय में श्री कृष्ण का आविर्भाव का कारण का वर्णन हो रहा था। भगवद गीता में भगवान बताए हैं क्यों भगवान आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, भगवान क्यों इस भौतिक जगत में आते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं को त्राण करने के लिए अर्थात रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम अर्थात असुरों को विनाशाय विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, इस कार्य के द्वारा धर्म को संस्थापन करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। संभवामी जुगे। तो पहला अध्याय में उसी का ही वर्णन हो रहा है। ये जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ क्या है? ये श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद का वर्णन है। दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, आस्क देम टू कम इन। जगह नहीं है आने का प्रेम मंजरी? हाँ, और बाहर कौन खड़े हुए हैं आने को बोले? और कारण क्या था? असुरों के द्वारा, असुरों को सामरिक शक्ति का प्रभाव इतना बढ़ गया था, और आशुरिक राजाओं ने उनकी सामरिक शक्ति के द्वारा, सामरिक शक्ति का मतलब सैनिकी शक्ति के द्वारा इस धरती पर बहुत अत्याचार कर रहा, और इस अत्याचार के कारण धरती माता धरणी देवी या भू देवी भूमि देवी बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत ही उनका कष्ट हो रहा था। तो तब धरती माता एक गाय के रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गए थे, रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी का अपना ये संकटपूर्ण अवस्था का वर्णन किया। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति को रक्षा करना उनके लिए, इस स्थिति को संशोधन करना, सुधारना उनके लिए संभव नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी जो ये सारे ब्रह्मांड के पालन करने वाला है, वो भी निराश हो गए, वो भी, उसको भी कुछ करने का क्षमता नहीं रहा था स्थिति में। तब उन्होंने भगवान के पास क्षीर सागर के तट पर गए। इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर एक दूध की एक सागर है, जहां भगवान क्षीरोदोक्षायी विष्णु विराज करते हैं। तो वहां जाके ब्रह्मा जी ने भगवान के पास स्तप स्तुति करना शुरू किया कि इस स्थिति को संशोधन करने के लिए आप कुछ कीजिए, और आपके अलावा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, अच्छा पहले बात तो ये है कि ये किस, क्या केवल सारे कुछ कहानियां हैं? ये और ये घटनाएं हैं, ये सच है, ये हुआ था। अर्थात ब्रह्मा जी है, ना क्या ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति का कल्पना है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी कौन है? इस ब्रह्मांड के जो जोश हाँ
आर्किटेक्ट
ओके आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट का हिंदी क्या होता है हाँ रचना हाँ उन्होंने ब्रह्मा जी ने किए हैं और ब्रह्मा जी यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सबसे समर्थवान व्यक्ति हैं फिर भी उनके लिए कभी कार्य किसी कार्य असंभव हो जाता है तो तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं तो इसे तो हमें तीन विषय हमें कंफर्म हो जाता है एक ब्रह्मा जी हैं जो ब्रह्मांड के पालन करने वाला है ब्रह्मांड को रखवाला है अच्छा ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं श्री विष्णु जो हैं स्वयं भगवान तो ये विचार ठीक से समझ लिए हैं आप लोग ये समझना जरूरी है मान लिए हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी हैं बल्कि ब्रह्मा जी से भी आगे बढ़कर हैं विष्णु और विष्णु कौन है विष्णु है परमेश्वर भगवान और विष्णु कहाँ रहते हैं इस ब्रह्मांड में भी भगवान श्री विष्णु विराजमान है एक तो ब्रह्मांड के हर जगह में वो है भगवान सर्वत्र विराजमान है हर अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है हर ब्रह्मांड के बीच में विराजमान है अंडांतरस्थ और हर परमाणु के अंदर भी भगवान परमाणु चय अंतरास्थम अंतरस्थ हर परमाणु के अंतर में अर्थात अंदर भी भगवान विराजमान है तो भगवान कहाँ है और भगवान कहाँ नहीं है भगवान सर्वत्र है भगवान सर्वत्र ही विराजमान है बल्कि भगवान भौतिक जगत में भगवान साधारणतया निष्क्रिय रूप में रहते हैं यहाँ भगवान क्रियाशील नहीं है जब लीला विलास करते हैं तब भगवान क्रियाशील होते हैं बल्कि नहीं तो ये जो भगवान का जो विराज रूप है जैसे कारणोदोक्षय विष्णु या महाविष्णु गर्भोदोक्षय विष्णु और क्षीरोदोक्षय विष्णु ये क्षीरोदोक्षय विष्णु ही हर जीव के परमात्मा है तो ये तीन विष्णु निष्क्रिय रूप में इसलिए तीन स्थिति में ही तीन विष्णु ही भगवान श्री विष्णु इस तीन रूप में ही सोए हुए हैं लेटे हुए हैं शाई सो जब सोते हैं सोने का मतलब क्या होता है निष्क्रिय है क्रियाशील नहीं है तो कारणोदक्षय विष्णु महाविष्णु भी लेटे हुए हैं गर्भोदक्षय विष्णु भी लेटे हैं हुए हैं और क्षीरोदक्षय विष्णु भी लेटे हुए हैं सोए हुए हैं मतलब क्रियाशील नहीं है बल्कि जब भगवान अपना लीला प्रकट करते हैं तब भगवान सक्रिय होते हैं ये हैं विष्णु और अवतारों लीला विस्तारकारी अवतारों में अंतर तो ऐसे भगवान के पास जब ब्रह्मा जी गए और भगवान के पास अपना आरजी पेश करना शुरू किया कि ये पृथ्वी का ये हाल को थोड़ा आप संशोधन कीजिए इस हाल से इस स्थिति से पृथ्वी को आप रक्षा कीजिए आई थिंक यू विल हैव टू कम फॉरवर्ड अ लिटिल मोर दैट्स बेटर तब भगवान उनके समक्ष अर्थात ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के साथ जो देवताओं गए थे उनके समक्ष भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं हुए कोई भगवान को देख नहीं सका तब भगवान त तब ब्रह्मा जी भगवान को ध्यान करना शुरू किया। तब ध्यान करने से भगवान श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु ने ब्रह्मा जी के हृदय में कुछ संदेश भेजा, और वो संदेश क्या था? ठीक है ब्रह्मा, मैं आ रहा हूं, ये स्थिति को सुधारने के लिए मैं आ रहा हूं, और तुम भी सारे देवताओं को बताओ कि वो सब यदुवंश में जन्म लेने के लिए, ताकि वो सब हमको सहयोग दे सके। भगवान को क्या किसी को सहयोग का जरूरत होता है? नहीं, बल्कि भगवान क्यों तब देवताओं को आने के लिए बोला था, यदुवंश में जन्म लेने के लिए बोला था? क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान साधुओं को एक सुजोग देते हैं, तब ताकि वो लोग भी उनके उनके एसोसिएशन, उनका संग प्राप्त हो सके। इस ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को त्राण, ऐसे तो त्राण का मतलब होता है रक्षा, बल्कि यहाँ इस त्राण शब्द का अर्थ है आनंद प्रदान। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों को रक्षा भगवान हर स्थिति में ही कर रहे हैं, हर स्थिति में भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का और एक नाम है भक्त वत्सल, भगवान भक्तों पे रखवाला है, इसलिए भगवान है भक्त वत्सल। भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान को खुद आना नहीं होता है, भगवान अपना शक्ति के द्वारा, जैसे हमें पता है अजामिल को रक्षा करने के लिए, अजामिल केवल भगवान का नाम ग्रहण किया था, केवल नारायण मृत्यु के समय जब शरीर छोड़ने वाला था, अर्थात जमदूत आ गया था, ये भी एक सवाल है, जमदूत है? हाँ है, जमराज है, जमालय है, और जमालय में, जमराज के आलय में, अर्थात जमराज के स्थान में लेने के लिए जमराज अपने दूतों को भेजते हैं। किसको, किसके लेने के लिए? जो पापी हैं, जो पाप करते हैं, जो बुरा काम करते हैं, जो अन्याय कार्य करते हैं, उनको मृत्यु के पश्चात जमराज के वहाँ उसका विचार होता है। सबसे महान विचारक हैं जमराज, धर्मराज। धर्मराज ही धर्म को रक्षा करने करते हैं, जो दंड दंड देकर पापियों को सजा देने के लिए। तो जमराज, जमदूत जब आया था, अजामिल बहुत पापी था, तो जमदूत जब आया तो अजामिल को, जमदूत जब आया अजामिल को लेने के लिए, तो अजामिल, तो ये जमदूत तो बहुत ही भयंकर है देखने में, वो डर गया तब और सोच समझ गया कि उसका अब प्राणांत होना है, होने वाला है, शरीर छोड़ने वाला है, ये लोग आया है उसको लेने के लिए, तो उसके कारण अपना बच्चे को वो बुलाने लगा। अपना जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम था नारायण, उसके प्रति बहुत ही आशक्त था अजामिल। हमारा आसक्ति जहां सबसे गहरा होता है मृत्यु के समय, उसका ही याद आता है, इसलिए हमें सोचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, हमारा आसक्ति सबसे गहरा कहां हो रहा है, क्योंकि मृत्यु के समय उसका ही याद आएगा। तो उसका आसक्ति कहाँ था? अपना छोटा सा, जो सबसे छोटा लड़का जो था उसके प्रति था, और उसका नाम था नारायण, तो उसको बोलने लगा, पुकारने लगा। तो नारायण मुंह से जब ये नारायण नाम निकला तो इसे नामाभास हो गए, नाम में शुद्ध नाम नहीं हुआ, नारायण का संबोधन नहीं हुआ था, बल्कि ये नाम का आभास हो गया। और नामाभास के कारण अजामिल का सारे पाप मोचन हो गया था। और जब पाप और नहीं रहता है तो क्या होता है, तो विष्णुदूत आ गया, नारायण का नाम ले सुनते ही विष्णुदूत आ गया और विष्णुदूत ने जमदूतों को भगा दिया, तुम यहां से चले जाओ। जमदूत बोले ये पापी है हमारा, इसको लेने के लिए हम आए हैं। तो विष्णुदूतों ने क्या बोला, ये नारायण का नाम लिया तो इस कारण जितना सारे पाप था वो सब खत्म हो गए, संशोधन हो गया। अब इसके जिम्मेदारी तुम्हारे पास नहीं है, ये हमारा जिम्मेदारी। तो जमदूतों ने जमराज के पास जाकर पूछा था ये कैसा हुआ, ये तो इतना सारे पापी था, ऐसा कोई पाप कार्य नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। यद्यपि वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण का लड़का था, बचपन में उसको बहुत ही सही शिक्षा मिला था, बहुत ही संस्कृति सही शिक्षा था उसका, बल्कि बाद में असत संघ के प्रभाव से वो गिर गया था और इसके कारण वो एकदम बहुत ही बड़ा पापी बन गया था। एक असती के संग के कारण वो एकदम भ्रष्ट हो गया। और वैसे तो था ब्राह्मण का लड़का, बल्कि वो डाकू बन गया, पैसे रुपये नहीं था तो उसको जो बुरा काम करने के लिए वो बुरा काम और भी अधिक करने शुरू किया, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, तो चोरी करते करते चोर से डाकू बन गया। और ऐसा कुछ खराब काम बुरा काम नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। तब अजामिल जब मृत्यु के समय में जमदूत आया था, फिर भी जमदूत अजामिल को कुछ कर नहीं पाया, स्पर्श भी कर नहीं पाया, क्यों, क्योंकि वो भगवान का नाम लिया था। तो आप देखिए ये जो भगवान का नाम है ये कितना प्रभावशाली है, नाम की प्रभाव कैसा है। तो अजामिल एक बार नाम लिया, और जो व्यक्ति हर समय भगवान को नाम लेते हैं उसका हाल कैसा हो, इसलिए हर रोज कम से कम 16 माला
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे,
ये लेते रहना। और एक भी याद रखना चाहिए कि आसक्ति कहाँ होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए। तो मृत्यु के समय किसको याद आएगा, भगवान को याद आए। बल्कि आजकल क्या हो रहा है, भगवान को तो छोड़िए, सब लोग अपना परिवार को भी छोड़िए, अपना कुत्ता के प्रति उसका आशीर्वाद। ये जगह जगह में, पहले तो छोटे मोटे जो शहर था वहां का आदमी कुछ उसका सदाचारी होता था, बल्कि आजकल क्या होता है हम देखते हैं यहाँ उज्जैन ऐसे शहर में भी सब कुत्ता लेके सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक। और तो ये तो हम देखते हैं ऐसे क्या हुआ, आजकल का स्थिति कैसा हुआ, डॉग हैज बिकम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, कुत्ता ही मनुष्य का सबसे जिगरी दोस्त बन गया। तो अंत में किसका याद आएगा, अंत में किसका याद आएगा। तो इसलिए हाँ सोच समझ कर हमारा कार्य करना चाहिए, कभी ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण जिसका फल हमें नुकसान ला सकता है। अजामिल का ये था भाग्य, ये था सौभाग्य, ये था कि उसका आसक्ति अपना लड़का के ऊपर था, छोटा सा लड़का का प्रति, और लड़का भी, लड़का का नाम भी था नारायण। तो इसलिए देखिए, भगवान का भक्त का नाम रखने से, भगवान का नाम से नाम रखने का फायदा क्या होता है। अगर आसक्ति वहां भी है तो इस नाम के कारण भगवान की प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति संपर्क जोड़ी। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान के नाम का प्रभाव कैसा है भगवान के। तो भगवान शिवदोक्षाय विष्णु ने क्या बोला कि तुम जब ब्रह्मा जी को क्या बोला, तुम देवताओं को बताओ, बोलो कि भगवान ये जदुवंश में उन सबको जन्म लेने की। तो ब्रह्मा जी भगवान की ये संदेश उनको बताया, इस कारण जदुवंश में सारे देवताओं का जन्म हुआ था। ये गोपी गीता में एक श्लोक है, आपको याद है शायद, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बिखनो सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सत्तताम। बिखना, बिखनश कौन है? बिखनश है ब्रह्मा जी का नाम। बिखनश, बिखना सार्थितो, बिखनस के कारण, ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के अनुरोध के कारण आप विश्वगुप्तये, ये विश्व को, पृथ्वी को, सृष्टि को रक्षा करने के लिए, गुप्तये सख उदयवान हे श्री कृष्ण, आप उदीय उदयवान, उदित हुए हैं, आपका उदय हुआ है कहाँ, सात्तताम कुले, इस जदुवंश में आपका जन्म। बल्कि जब यद्यपि आप जदुवंश में ऐसे जन्म लिए हैं, बल्कि आप कौन है, नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका जशोदा माई का लड़का नहीं है, आप कौन है, अखिल देही नाम अंतरात्मित, आप सारे जीवों को अंतरात्मा है। अंतरात्मा कौन है, परमात्मा। तो ऐसे भगवान का आविर्भाव का कारण का वर्णन हुआ है। देवताओं पर इसके पश्चात देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। अच्छा, ये भी हम संक्षेप में बोल देते हैं, ये अध्याय का विषय क्या है। भगवान जब देवकी के गर्भ में विराज करते थे, कर रहे थे, देवकी तब कहाँ थी, कंस के कारागार में। और कंस के कारागार का, कारागार में उनका बहुत ही कष्ट हो रहा था, बल्कि फिर भी भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे। क्यों? हाँ, क्योंकि पिछले जन्म में देवकी प्रार्थना चाहित प्रार्थना की थी कि भगवान, बहुत तपस्या की थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो। तो भगवान अपना भक्तों को मनकामना पूर्ण करते हैं, भक्त जो कुछ चाहते हैं भगवान उनके मनकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान उनको आश्वासन दिए थे कि ठीक है, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो इस कारण देवकी के गर्भ में भगवान आए थे। तो ऐसे माँ के रूप में अगर चाहते हैं तो ऐसे ही अनुभव होना चाहिए कि मेरा गर्भ में है भगवान। तो इस कारण भगवान एक साधारण मनुष्य के तरह, मानव शिशु की तरह देवकी के गर्भ में विराज कर रहे थे। अगर नहीं होता तो देवकी को पता नहीं चल, ये ऐसा मालूम नहीं होता कि मेरा लड़का है। भगवान को गर्भ में रहने का कोई कारण नहीं था। भगवान किसी भी प्रकार से भगवान प्रकट हो सकते हैं। हम देखे हैं भगवान कभी कभी ऐसे सीधा आ जाते हैं, जैसे द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछाड़े, चक्र से ग्राहक मारी गजराज को उठारे। जब गजराज गजेंद्र जब मृत्यु के समय जब उसका ऐसा लगा कि अब तो मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, लड़ाई तो मगर के साथ बहुत बहुत देर तक किया, बल्कि आज अब मैं हार गया, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल राख शरण अब तो जीवन हारे, तब गजेंद्र क्या किया, भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया ऐसे, हे गोविंद हे गोपाल राख शरण अब तो जीवन हारे। तब भगवान तब द्वारका से सीधा आ गए, द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे और चक्र से ग्राहक मारी गजराज को उधारे। तो भगवान सीधा आ सकते हैं, कभी कभी भगवान ब्रह्मा के नाक से निकलते हैं, जैसे वराहदेव ब्रह्मा जी के एक समय ब्रह्मा जी का ऐसा लग रहा था कि नाक में कुछ हो रहा है, तब जब when he sneezed तब एक छोटा सा एक सुकर निकला था, सुअर। भगवान ऐसे निकला और बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया, और तब भगवान इस बराह रूप में, बराह रूप बराह अवतार के रूप में भगवान ऐसे आए थे। क्यों? बसती दर्शन शिखरे धरणी तब लग्ना शोषिनी शशंक कलेव निमग्ना केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश। केशव एक शुकर के रूप लिए थे, ऐसे शुकर योनि से नहीं निकला, शुकर रूप से ऐसे ब्रह्मा जी के नाक से निकल गए। मीन के रूप में भगवान आए थे, एक छोटा मछली के रूप में प्रियव्रत के समक्ष। नरसिंह रूप में भगवान एक स्तंभ से निकला। ऐसे भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, ये भगवान का लीला है। बल्कि इस लीला में भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो गर्भ में भगवान विराज कर रहे थे, देवकी का लग रहा था कि हाँ मेरा संतान आया है मेरा गर्भ। बल्कि देवताओं को पता था ये कौन है, यद्यपि देवकी के गर्भ में है, देवताओं को पता चल गया, उनको तो पता रहता है, उनको पता चल गया कि तो परमेश्वर भगवान है, तो उन्होंने वहां आकर भगवान को स्तब स्तुति करना शुरू किया, वंदना करना शुरू किया। जब देवकी कंस के कारागार में थी, भगवान जब उनके गर्भ में थे, इनका देवता का प्रार्थना बहुत सुंदर है। तो एक दो हम यहां से पढ़ रहा हूं। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका जन्म नहीं होता। भगवद गीता में भगवान के बारे में भी कहा गया है, अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृतिं शाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। भगवान खुद कह रहे हैं कि अजो अपि, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, फिर भी मैं प्रकट होता हूं। क्यों? तो उसके बाद में भगवान बताया, परित्राणाय साधुनाम इत्यादि। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों को विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वास्तव में अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। यदि ये अभक्त तो प्रकृति के की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति के एक ठोकर से सारे असुरों को विनाश हो सकता है, बल्कि भगवान असुरों को संहार करने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों को संग देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये जो विनाश जो है, ये भगवान अपने एजेंसी के द्वारा कर सकते हैं, प्रकृति के द्वारा कर सकते हैं। किसी को विनाश करना प्रकृति कर सकती है। जैसे हम देखते हैं, एक सुनामी आया था, कितने सारे आदमी को विनाश हो गया। तो ऐसे किसी को अगर भगवान किसी को अगर संहार करना है तो प्रकृति ही कर सकती है। प्रकृति करती भी है, प्रकृति अर्थात दुर्गा माई, दुर्गा माता महिषासुर को विनाश करती है, सारे असुरों को विनाश करती है। तो ये रूप में प्रकृति माता असुरों को विनाश आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये भूकंप हो गया, प्रकृति को क्या करना होगा? थोड़ा सा भू को अलग करना है, बस सारे कुछ नीचे चला जाएगा। एक समुन्द्र का एक लहर से कितने सारे को विनाश कर सकते हैं। और भी आगे बढ़कर हम देख सकते हैं, अगर ये जो ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद कर देते हैं, प्रकृति कर सकती है ना, तो कंट्रोलर तो ही है अगर, हाँ, और नहीं तो पृथ्वी चक्कर खा रहा है ऐसा, हाँ, थोड़ा क्षण भर के लिए अगर पृथ्वी ऐसे रोक गए तो क्या होगा, हाँ, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है सब विनष्ट हो जाएगा। और नहीं तो कभी कभी प्रकृति कैसे विनाश करते हैं, हाँ, असुरों के द्वारा ऐसे अस्त्र बनाते हैं, जैसे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, और वो बॉम्ब एक दूसरे के ऊपर फेंक कर असुरों को संहार कर दे सकते हैं। जैसे कुंभ और निकंभ के बीच में युद्ध हुआ था, ये दोनों भाई का दो राक्षस बहुत बड़े असुर था, उनको कोई भी मारने वाला नहीं था। उनका ये था कि बर मिला था ब्रह्मा जी से, कि उन दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार का संपर्क था, एकदम दोनों एक साथ रहता था, दोनों ये ऐसा लगता था कि वो दोनों का एक आत्मा और दो शरीर है। तो वो अमर होना चाहा तो अमर तो ब्रह्मा किसी को बनाना नहीं सकते हैं, तो बोले ठीक है तुम तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, केवल एक अगर तुम एक दूसरे को अगर मारोगे तो ही तुम्हारा मृत्यु होगा। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने इस बर मांगा था ऐसे, और बर प्राप्त भी हो गया था। तब क्या हुआ, देखा कि ये तो असुर बहुत सारे अत्याचार कर रहा है हर जगह, देवताओं ने भी कुछ नहीं कर पाया। तब उन्होंने तिलोत्तमा को सृष्टि की। तिलोत्तमा इतना सुंदरी एक अप्सरा है कि उनको देखकर एक भाई बोला ये मेरा है, दूसरा भाई बोला नहीं ये मेरा है। तो वापस में तब लड़ाई शुरू हुआ और एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो ऐसे कितने सारे तरह असुरों का संहार हो सकता है, इसलिए भगवान को आना नहीं पड़ता। बल्कि भगवान जब आते हैं क्यों आते हैं, कार्तिक जी क्यों आते हैं, भक्तों को प्यार करने के लिए। बहुत अच्छा। और भक्तों को प्यार लेने के लिए भी, भगवान भक्तों को प्यार देते हैं और भक्तों से प्यार लेते भी हैं। बहुत अच्छा। हे प्रभु, आप यदु वंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, बरहा, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दे। तो ऐसे भगवान का प्रार्थना करने के पश्चात तीसरी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म का वर्णन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ ये भी हम संक्षेप में देवकी के कंस के कारागार में देवकी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और वो एकदम रात को मध्य रात्रि में रात को 12 बजे भगवान प्रकट हुए थे अर्ध रात्रि में। और यद्यपि देवकी और वसुदेव दोनों को ही सिकली से उनको बधा हुआ था, श्रृंखलाबद्ध अवस्था में थे। कोई पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि देवकी और वसुदेव के रूप पर छती पर बहुत भारी पत्थर रखा गया था ताकि दो को ऐसे मूव नहीं कर सके, इतना कष्ट उनको दिया था कंस ने। फिर भी भगवान उनके गर्भ में, देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। और जो यहाँ भागवत में वर्णन है, जो चेन से श्रृंखल से बंधा हुआ था वो खोल गया ऐसे ही, और चारों ओर बहुत सारे सिपाही सांत्री था, सैनिकों द्वार रक्षा कर रहा था चारों ओर। कंस का बहुत भय था कि अगर देवताओं ने आकर कुछ कर दिया, क्योंकि डर रहता था उसको, क्योंकि उसको पता था कि देवताओं ने भगवान को मानते हैं और भगवान को चाहते हैं और भगवान भी उनको चाहते हैं। तो कंस ऐसा स्थिति रखा, केवल कारागार में ही नहीं डाल दिया था, बल्कि चारों ओर ऐसा स्थिति वो तैयार किया था, सृष्टि किया था, जहां कोई भी वहां नहीं आ सकता था। हजारों सिपाही चारों ओर, बल्कि सब एकदम सो गया, नींद में लीन हो गया। और कारागार का जो दरवाजा है वो भी खोल गया। बाहर उस समय बहुत बारिश हो रहा था, बल्कि वसुदेव अपना बच्चा को लेकर वहां से निकले, कारागार से निकले। भगवान बताया था जन्म के पश्चात जब वसुदेव और देवकी का हृदय वात्सल्य रस में पूर्ण हो गया था, तब बल्कि बाद में जब भगवान का चतुर्भुज रूप दर्शन किया और पता चल, तब उनका मन में ये वात्सल्य रस के कारण उनका मन में भय हुआ कि ये लड़का को तो आप कंस में आकर मार डालेगा, जैसे पहले 6 लड़का को कंस में मारा था तो इसको भी तो मार डालेगा, तो बहुत उनका कष्ट हुआ मन में। जैसे माँ और पिता का जैसा होता है अपने बच्चे के प्रति, अगर कोई शंका रहता है, कोई भय रहता है उसका, कुछ होने वाला है, आशंका रहता है, तब पिता माता जैसा उनके पुत्र के बारे में भी उन्होंने वैसे सोचने लगा, तब कंस ने कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप ग्रहण करके उनको आश्वासन दिया कि तुम डरो मत, कंस हमको कुछ भी नहीं कर पाए, देखो मैं कौन, तुम डर क्यों रही, मैं आ गया। तो ये देखते ही उनका मन में जो वात्सल्य भाव था वो निकल गया और श्रद्धा या भक्ति भाव से पूर्ण हो गया, संभ्रम भाव से पूर्ण हो गया। तब भगवान बताया कि अब नंद महाराज का घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, तुम हमें मथुरा वृंदावन में ले जाओ, वहाँ नंद महाराज के घर में हमको छोड़ के आओ और उनका जो लड़की हुई है उसको लेके यहाँ वापस आ जाओ। तो भगवान के निर्देश अनुसार वसुदेव अपने बच्चा को, वासुदेव कृष्ण को लेकर नंद महाराज के और घर की ओर चले, वृंदावन के ओर चले। तो उस समय बाहर बहुत बारिश हो रहा था, झड़ झंझा। तब अनंत शेष वहां आके एक छत्र की तरह वसुदेव के सर्प के ऊपर अपना फना को विस्तार किया और ऐसे बारिश से बच्चे को रक्षा किया। नंद महाराज वसुदेव जब जमुना के किनारे आए तो देखा जमुना बहुत श्रोतस्विनी, बहुत बारिश के कारण पानी से भर गया है, एकदम पूरा हो गया है पानी से। वो सोचने लगा तो मैं अब कैसे जमुना के उस पार जाऊंगा। तब देखा एक श्याल बोलते हैं, लोमड़ी आ गया कहां से और ऐसे वो पानी के ऊपर से चलने लगा कि लग रहा था कि वहां पानी केवल 6-7 इंच तक होगा। तो वसुदेव सोचा रही तब तो मैं भी तो जा सकता हूँ यहाँ से। तो वसुदेव भी उस लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के पश्चात अचानक अपना हाथ से लड़का निकल गया और पानी में गिर गया। तो आप देखो कैसा हाल हुआ वसुदेव का, ढूंढने लगा कहाँ गया मेरा लड़का, बहुत ढूंढने लगा बल्कि बच्चा नहीं मिल रहा है। तो कुछ समय के पश्चात बच्चा को हाथ में लगा कि हाँ, तो फिर कृष्ण को मिल गया। उस समय क्या हुआ था, जमुना देवी सोचा कृष्ण को संग मिलने वाला है तो इस अवसर तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो जमुना देवी ने वसुदेव के कोल से, गोद से कृष्ण को ऐसे ले लिया था और कुछ समय तक कृष्ण के साथ खेलने के बाद वापस कर दिया वसुदेव के पास। और वसुदेव तब अपना बच्चा के लेकर जमुना के उस पार नंद महाराज के घर में गए और तब वहां भी रात काफी हो गया था, सब एकदम सो गए थे। यशोदा माई भी सो गई थी और उनके पास वहां जाके अंधेरा था, तो थोड़ा सा जो चंद्रमा के कारण अष्टमी तिथि था भाद्र महीना का, बारिश का महीना है भाद्र, तो थोड़ा सा जो चंद्रमा था उस किरण से देखा कि एक लड़की है बिस्तर की ऊपर, तो उसको कृष्ण को वहां रखकर बच्चे को अपने गोद में ले लिया। गोस्वामीगण ये विचार दिए हैं कि वसुदेव जब वासुदेव कृष्ण को लेकर वहां आए थे तब अंधेरा था, उस समय सही रूप से देख नहीं पाया कि यशोदा माई को दो बच्चा हुआ था, एक पुत्र और एक कन्या। और जब वसुदेव कृष्ण को जब रखा बिस्तरा पर तो वसुदेव कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण एक हो गया, उसको पता नहीं था, क्योंकि शास्त्र में यह वर्णन है कि कृष्ण अन्न जदु संभूत, ये जो वासुदेव कृष्ण जो है वो जदु संभूत, जदु वंश में जो जिनका जन्म हुआ वो अन्न है, वो दूसरा है। बल्कि नंदनंदन वृंदावनेश्वर कृष्ण जो है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है, वो वृंदावनम परित्यज्य कुत्र कदापि कदापि कुत्र न गच्छति, वृंदावन छोड़कर ये कृष्ण कभी कहा नहीं जाते ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो ये जब अर्थात नंद महाराज के पुत्र की पुत्र के रूप में भी कृष्ण आए थे और जब वसुदेव वासुदेव कृष्ण को लाया तो नंदनंदन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण, अर्थात नंदनंदन कृष्ण के में ही वासुदेव कृष्ण लीन हो गए, एक हो गए। ये नंदनंदन कृष्ण ही आराध्य भगवान ब्रजेश्वतनाय श्री कृष्ण, आराध्य भगवान परमेश्वर भगवान आदि परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण, और उन्हीं का ही भिन्न भिन्न प्रकाश अवतार विस्तार होता है, जिसे उनका स्वांग्स कहा जाता है, स्वांग्स और विभिन्न नाम्स। स्वांग्स में से सबसे पहले विस्तार है बलराम, बलराम के पश्चात चतुर्भुह द्वारकेश, द्वारका का चतुर्भुह, वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का तत्व वर्णन ऐसे हुआ है। और वृंदावनं परित्यज्य कुत्र कदापि न गच्छति, ये नंदनंदन कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। तो आप सवाल हो सकते हैं, तो अक्रूर जो कृष्ण जब कृष्ण को मथुरा में लाए थे तो क्या हुआ, ये भी तो सही सवाल है। कृष्ण मथुरा चले गए थे वृंदावन से, नहीं, जब वृंदावन और मथुरा का जब सीमा में जब कृष्ण आया तो कृष्ण और बलराम जमुना में नहाने को गए। जब नहाने गया तब अक्रूर ने देखा चतुर्भुज रूप में कृष्ण को दर्शन किया। तो ये चतुर्भुज है वासुदेव कृष्ण जिसको दर्शन हुआ। ये चतुर्भुज वासुदेव कृष्ण रथ पर चला और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन वापस चले गए। तो ऐसा लगता है जो ये विचार है 100 साल कृष्ण वृंदावन से निकट बाहर थे, ये कैसी बात है? नहीं, कृष्ण वृंदावन में ही थे, बल्कि उनका ऐसा भ्रम होता था कि कृष्ण कहीं चले गए हैं। ब्रजवासियों को ऐसे भ्रम होता था कृष्ण कहीं चले गए, तो जब कृष्ण को मिलते थे तो वो देख सोचते थे कि मैं हम लोग सपना देख रहे हैं। जब कृष्ण के साथ मुलाकात होता, कृष्ण आता था उनके साथ, जो उनका ये होता है ऐसा मन में ऐसा भावना रहता था। ये बहुत ही गहरा विचार है, ये संक्षेप में मैं वर्णन करने का कोशिश किया। तो तब कृष्ण को छोड़ रख कर वो लड़की को लेकर कंस के कारागार में वापस आ गया। जब कंस के कारागार में वापस आ गया तो कारागार का द्वार बंद हो गया, वो जो सिकल था वो भी हाथ पर आ गया, पैर पर आ गया, और ये बच्ची रोने लगी। तो ये रोने का शब्द सुनते ही सारे सिपाही लोग जाग उठा और तुरंत कंस के पास जाकर ये संवाद पेश किया कि देवकी का संतान पैदा हो चुका है। ये सुनते ही कंस एकदम झट से वहां आ गया। कैसे आया? वो डर के मारे और कांपते कांपते आ रहा था। वो सोए हुए थे, उनका बाल बहुत लंबा था, वो बाल सारे खड़ा हो गए, इतना डर हुआ था कंस का, क्योंकि उसको पता चला कि अब उसका मौत आ चुका है। बल्कि आकर देखा कि ये एक लड़की है, तो देवकी ने बताया, तो ये देखो तुम्हारा डर तो पुत्र से था, बल्कि ये तो लड़की है, इसको छोड़ दो, इसको हत्या मत करो। बल्कि कंस इतना निष्ठुर था कि देवकी और देवकी का इतना अनुरोध अनुरोध सुनते हुए भी उसको मन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उसका, और वो लड़की को ऐसे हाथ में उठाया और वो पत्थर में जब फेंकने का प्रयास किया तो हट से वो लड़की निकल गया बच्चा, और गगन मार्ग में जाकर अपना अष्टभुजा रूप ग्रहण करके कंस को बताया, कंस तू हमको कैसे मारेगा, बल्कि जो तुझको जो मारेगा वो आ चुका है। तो ऐसे भविष्यवाणी करके ये जोग माया जो वसुदेव जो यशोदा के कन्या के रूप में आई थी वो वहां से निकल गई, और कहां अपना 10 रूप प्रकाश करके अपने आप को इस पृथ्वी पर ये किया, और कहां आई? विंध्याचल में आई, अर्थात ये मध्य प्रदेश में ही है, इसी के इस स्थान के आजू बाजू में कहीं आ गई थी। तो ऐसे श्री कृष्ण का जन्म लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरे। मैं अच्छा, कोई अगर प्रश्न है किसी को, 1-2 मिनट हम प्रश्न कर सकते हैं।
एक्चुअली मेरा 8 प्रश्न।
अच्छा, अब एक प्रश्न बताऊं? मैं कम से कम 8 दिन रहूंगा।
एक प्रश्न यह है कि पृथ्वी माता को जो बहुत भार होती है, पृथ्वी तो भगवान का एक कॉन्सर्ट है, तो उनको क्यों बार बार इस तरह की सफरिंग, क्योंकि सफरिंग कम्स फ्रॉम सिन, बट शुड शी सफर रिपीटेडली ड्यू टू दी एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द नंस, तो उनको भार क्यों होना चाहिए बार बार?
ये भार जो है, ये भार है मन का, कष्ट का भार, कि जैसे माँ का मन में कष्ट होता है, देखो मेरे बच्चे लोग कैसा करते, कांजी करते। और ये तो एक विचार है। दूसरा विचार ये है कि ये सारे भगवान का लीला का ही आयोजन है। भगवान जब आते हैं तो असुरों को, आसुरिक स्थिति को संशोधन करने के लिए भगवान आते हैं। ये आसुरिक स्थिति के कारण असुरों के साथ भगवान का संघर्ष होता है। भगवान संघर्ष नहीं करते हैं, भगवान को आने के कारण असुरों ने उनके साथ संघर्ष करते हैं। तो ये जो स्थिति का रचना लीला के लिए जरूरत हो, जैसे ड्रामा में हीरो रहता है और विलेन रहता है ना? अगर विलेन रहता है तो हीरो का हीरोइज्म प्रकाश करने का अवसर नहीं मिलता था, है ना? तो इसलिए स्थिति ऐसा लगता है कि धरती माता को कष्ट हो रहा है, बर्डन्स हो रहा है, बल्कि असल में ये लीला का ही विस्तार है, लीला का सूचना है, ऐसे लगता है बल्कि असल में नहीं। हाँ, इससे बात सही है। भक्तों को तो कोई कष्ट नहीं हो सकता, और भगवान का जो शक्ति है, ये शक्ति का कष्ट कैसे हो? अगर साधारण जीव का ये नहीं होता है, जीव तत्व का कष्ट नहीं, भक्त बनने से कष्ट नहीं होता है, तो शक्ति तत्व का कष्ट कैसे हो? बल्कि ये लीला के कारण एक ऐसा लगता है कि हो रहा। अच्छा, आपका प्रश्न है। पुत्र का
बच्चों खिलाने का उसको आनंद नहीं
होगा। अच्छा, हाँ, इसका भी ये था कि भगवान जब उनको ये आश्वासन दिए थे कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, बल्कि ये भी ये बोले थे कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, बल्कि तुम्हारा मातृ रूप में तुम्हारा जो सेवा, वो मैं नहीं लूंगा। I think you know Hindi, don't you?
अजामिल का जो स्टोरी है, उसमें जो अजामिल को सिर्फ लास्ट मोमेंट में नारायण बोलने से उनको एक्चुअली यमराज नहीं लिए थे, तो जो बाकी सेंट्स हैं वो लोग इतने इयर्स तपस्या करते हैं, तो इन द एंड लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ तपस्या दे एक्चुअली गेट द सेम फूड।
After so many years of tapasya?
They also like, Jamila got free. Yamraj didn't take him. So that was a really, and to the other end, the saints, they actually do so much of austerity all this, their life
long. Yes. So, in this way, aise hum dekh sakte hain, कि तपस्या का फल और भक्ति का फल में अंतर क्या है। बहुत साल की तपस्या के बाद जो नहीं मिलता है, भक्ति का लेश मात्र से ही वो मिल जाता है। ये भगवान का नाम का प्रभाव इतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम ना सही नाम भी वो ग्रहण नहीं किया, नाम आभास हुआ था, नाम का आभास हुआ था। और इस नाम का आभास से ही सारे पापों से मुक्ति मिल गया था। तो आप बताओ क्या तुम क्या करोगी? मैं क्या तपस्या करूंगी? ओके तो जो आसानी से जब मिल जाता है तो कष्ट उठाने का क्या जरूरत है। हाँ, सबको ही ऐसा लगता था। ऐसे नंदनंदन आता था, हाँ, उनके साथ लीला विलास करते थे, बल्कि उनको लगता था कि वो सपना देख रहे हैं। तो उनका ऐसा लगता था कि सपनों में जब कृष्ण को देखता था सोचता था कि कृष्ण आ गए हैं, और जब ऐसे वास्तव में कृष्ण को देखता था तो उन्होंने सोचते थे कि ये सपना है। तो ये भी एक जोग माया का एक प्रभाव है। तो इसलिए बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम का जो प्रकाश है श्रृंगार, श्रृंगार रस का चरम प्राप्ति मिलन में नहीं बल्कि विप्रलंभ में है। मिलन और विरह, संग और वियोग। तो ये वियोग अर्थात ये संयोग में जो आनंद है उससे भी अधिक आनंद है वियोग में। तो ये भाव, ये आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे लीला विलास कर रहे हैं। बलराम भी, या हाँ, क्योंकि वृंदावन में बलराम बलराम है, वृंदावन में कृष्ण बलराम, और मथुरा में या द्वारका में है वासुदेव और संकर्षण। ये भी बलराम का ही विस्तार है, स्वयं बलराम नहीं, बलराम का पहला विस्तार संकर्षण। द्वारका में इसलिए चतुर्गुह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वृंदावन, हाँ, बलराम भी वृंदावन में ही है, वो भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते हैं। जब जाते हैं तब वो है कौन, उनका ही अंश विस्तार। जैसे वासुदेव का कृष्ण का विस्तार वासुदेव में हुआ, बलराम का विस्तार संकर्षण में, संकर्षण के रूप में। और जब कृष्ण जाते हैं उनके साथ साथ उनका शक्तियां भी जाती है, जैसे राधा रानी भी गए कैसे, सत्यभामा के रूप में। चंद्रावली भी गई कैसे, रुक्मिणी के रूप में। ललिता गई जाम्बवती के रूप में। ऐसे सब जब कृष्ण भी जाते हैं वो लोग भी उनके साथ साथ जाते हैं, बल्कि जोगमाया के कारण ऐसा लगता है।
मेरे मन में एक प्रश्न भी आया कि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, मध्य रात्रि में, इसी प्रकार बलराम जी के जन्म के बारे में उल्लेख तो
बलराम के है पुराण में है। देखिए भागवत में सारे विस्तृत वर्णन उतना विस्तृत रूप में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ उसका संक्षेप रूप में उसका वर्णन हुआ है, और पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है।
किस समय
हुआ है? बलराम का आविर्भाव दोपहर को हुआ, मध्याह्न।
बलराम ने गुरु जी भगवान थे या?
भगवान नहीं थे, है। हाँ, कृष्ण एक भगवान का विस्तार होता है जिसे उनका स्वांश कहा जाता है, स्व अंश। एक ही रूप में जैसे एक दिया से और बहुत सारे दिया जलाया जाता है, जब दिया जब जलता है तो हर दिया का ही शक्ति प्रभा किरण समान रहता है, वैसे ही भगवान हजारों करोड़ों अनंत रूप में भगवान ऐसे अपने आप को विस्तार किए। उनका प्रथम विस्तार है बलराम, इसके उनके बाद चतुर्भुज द्वारका का, उसके पश्चात वैकुंठ का चतुर्भुज, उसके पश्चात महाविष्णु, गर्भोदोक्षाय विष्णु, क्षीरोदोक्षाय विष्णु, और क्षीरोदोक्षाय विष्णु के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में, हर परमाणु के बीच विराजमान है। ये सब एक ही भगवान ही है, ये भगवान का अनंत शक्ति का प्रकाश है, अचिंत शक्ति का प्रकाश है। अच्छा, यहाँ कौन हाथ?
साधु बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से बलराम को सोचना आला समझना माना है।
हाँ,
शास्त्र में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जो होते हैं अलग सोचना,
अलग
अलग सोचना ठीक नहीं है, एक ही रूप से देखा जाता है।
एक ही रूप से देख सकते हो, बल्कि दूसरे रूप से भी तो देखना होगा। कृष्ण बलराम, कृष्ण है बलराम भी है, ये अचिंत है।
दुर्योधन राव जी के पास, राव जी का शिष्य था, और भीम कृष्ण का शिष्य था, दोनों में जो लड़ाई हुआ एक हार गया, दोनों ही भगवान के रूप है, इस रूप के हुआ जो हार गया।
तो ठीक है, बलराम भी चाहता है कि तुम कृष्ण का भक्त बनो, केवल बलराम का भक्त रहोगे और कृष्ण को नहीं मानोगे तो दुर्योधन बन जाएगा। ओके, हरे कृष्णा, आई विल स्टॉप नाउ। आज नायिका का जन्मदिन है, वेयर इज नायिका? ओके, so you can bring your mother here. So today is Naika's birthday, so she will cut the cake and garland, that's it. Okay, bring the cake and put it in here.
Thank you.
Hare Krishna. Let me introduce Naika. Naika Devi Dasi is from Russia, but she is in India for last how many years? 5 years. And she is in Ujjain for how many years? 3 and a half. So for last 3.5 years, Naika is in Ujjain and she is serving very nicely. Before her baby was born, she was going out distributing books every day. She used to go out distributing books every day and I used to try to stop her, but she was so committed to distributing books every day. And thank you so much for serving Srila Prabhupada so much. Thank you very much. So we'll sing Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Thank you.